भागवतम के भागवत सार श्रृंखला में आज 11वें अध्याय पर चर्चा होगी। 11वें अध्याय का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करता है, इसको दोहराएंगे और फिर अध्याय पर चर्चा करेंगे। कृपया श्लोक को दोहराइए। भवायन स्वं भवेश्व भावना त्वमेव माता प्रसुपतिः पिता त्वं सद्गुरुः परमं च दैवतम् स्वरोत्पत्ति पिता त्वं सद्गुरुः परमं च दैवतम् यस्यां वृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवाय न स्वं भवेश्व भावना त्वमेव माता प्रसुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुः परमं च दैवतम् यस्यां वृत्त्या कृतिनो बभूविमा। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता शुभचिंतक प्रभु पिता गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमें सभी प्रकार के आशीष दे सकते हैं जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। उनसे हमारा संबंध नित्य है, न तो इसको तोड़ा जा सकता है न विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है यदि हम देश काल के सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशं स्थापितं येन मंगले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जैसे हर अध्याय के प्रारंभ में सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को गाकर उनकी कृपा प्राप्त करके फिर भागवत को समझने का प्रयास करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं को गाएंगे और फिर अध्याय पर चर्चा।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्कला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कली भांतो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतकर हाननुंच तदा चिन्मा प्रेरणा हृत्कंठयो सुरा।
हरे कृष्ण। दस अध्यायों पर चर्चा हो चुकी है, भागवतम के प्रथम स्कंध पर। आशा है अब तक आप सबको कम से कम इन अध्यायों के शीर्षक और मूल विषय स्मरण हो चुके होंगे। पहले अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक बड़े सरल हैं। आप में से कितने लोगों को इसके शीर्षक याद हैं बिना देखे? कोई नहीं, केवल दस अध्याय। तो फिर मूल विषय तो पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि शीर्षक पर ही विषय आधारित होते हैं। तो कृपया इनको याद रखिए, ताकि जैसे जैसे भागवत में आगे बढ़ते जाएं, ऐसा ना हो कि पीछे का भूलते जाएं। हमें स्मरण रहना चाहिए। पहला अध्याय था मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों ने 6 प्रश्न किए, जिज्ञासाएं की भगवान के विषय में, जीवों के कल्याण के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में, गुण अवतारों के विषय में, लीला अवतारों के विषय में, ऐसे कई प्रश्न किए। फिर दूसरे अध्याय में दिव्यता और दिव्य सेवा, अर्थात उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया सुत गोस्वामी ने, और पहले 4 प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में दिया। उन्होंने समझाया कि क्या है, इस जो भी उन्होंने प्रश्न किए थे जीवों के विषय में, तो उन प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर तीसरे अध्याय में उन्होंने, तीसरे अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण सभी अवतारों के उपस या स्रोत उद्गम, तो उसमें उन्होंने कई अवतारों का वर्णन किया, क्योंकि प्रश्न था अलग अलग अवतारों का वर्णन कीजिए, और फिर श्री कृष्ण का भी वर्णन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया। 5वें और 6 प्रश्न का श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। फिर जब 4वां अध्याय आया, तो क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ था विषय, तो व्यास देव और नारद मुनि का संवाद होना था, तो 4वां अध्याय नारद मुनि का आगमन। हाँ, उस अध्याय में आगमन अंत में हुआ, लेकिन पूरा अध्याय वर्णन किया गया व्यास देव की स्थिति का। और फिर 5वें अध्याय में नारद का उपदेश, नारद मुनि ने उपदेश दिए श्रीमद् भागवतम के विषय में व्यास देव को। फिर 6वां अध्याय जिसमें नारद और व्यास का संवाद आगे बढ़ा, ये शीर्षक है व्यास नारद संवाद। और फिर 7वां अध्याय जहां द्रोण के पुत्र को दंड दिया गया, अश्वत्थामा ने प्रयास किया कि उसने मार दिए द्रौपदी के पुत्रों को, मार दिया, और फिर द्रौपदी बड़ी दुखी हुई, अर्जुन ने वचन दिया, पकड़ कर लाए, दंड दिया गया, ये 7वां अध्याय। और फिर 8वें अध्याय में जब भगवान जाने लगे, तो 8वें अध्याय का शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की कि आप नहीं जाइए, अभी तो हम लोगों को बहुत आवश्यकता है, आपने हर समय हमारी रक्षा की, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने की। तो भगवान रुक गए, और फिर युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए, क्योंकि इतने सारे लोगों को मारा गया, मार दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि मैंने मारा है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए फिर 9वें अध्याय में उनको लेकर भीष्म के पास आए। तो भीष्म देव का देह त्याग, ये 9वें अध्याय का शीर्षक है। 9वें अध्याय में भीष्म देव ने भगवान को सामने रखते हुए, भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनी मति भगवान में लगाते हुए अपने देह को त्यागा। और फिर जब ये हो गया और युधिष्ठिर प्रशासन करने लगे, तब 10वें अध्याय में भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भगवान का द्वारका की ओर प्रस्थान, ये 10वां अध्याय। और आज 11वें अध्याय पर चर्चा है कि भगवान ने प्रस्थान किया, और अब द्वारिका में उनका आगमन, श्री कृष्ण का द्वारिका में आगमन। तो ये 11वां अध्याय। तो आशा करते हैं कल तक आपको ये सब याद हो जाएगा, कृपया याद कर लीजिए, बड़ा सरल है। ऐसे अगर हम भागवतम के 330 अध्यायों का विषय भी याद कर लेंगे तो फिर पूरी भागवत कह सकेंगे। अगर कोई भी हमसे पूछ लेगा कि अरे श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट लेकर भागवतम का अनुवाद किया, तात्पर्य लिखे, क्या आप जानते हैं भागवतम में क्या है, तो हम लोग कम से कम कह सकेंगे कि भागवतम में क्या है, विषय को कह सकेंगे। तो जब श्री कृष्ण अलग अलग प्रांतों से होते हुए अपने दिन के क्रियाओं को, संध्या वंदन इत्यादि को करते हुए अब द्वारका में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही द्वारका में आते हैं तो सबसे पहले अपना शंख बजाते हैं, ये सूचना देने के लिए कि मैं आ गया हूं। शंख बजाने का क्या उद्देश्य था? क्या भगवान चाहते थे कि सब लोग आए मेरी पूजा करें, या क्या उद्देश्य था, क्यों शंख बजाया भगवान ने? भगवान ने शंख इसलिए नहीं बजाया कि लोग आकर पूजा करें। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं अलग अलग उद्देश्यों से। हमने एक जगह पर देखा है कि एक जगह मंदिर था, सड़क पर मंदिर था, छोटा मंदिर था गोवा में, और हम एक बार वहां प्रवचन कर रहे थे तो बहुत हॉर्न बज रहा था, बहुत ज्यादा। तो हमने लोगों से पूछा कि इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हैं लोग, तो बोले दरअसल हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, और जब मंदिर के सामने जाते हैं तो 2 मिनट स्लो करके पॉम पॉम कर देते हैं, तो भगवान को बताते हैं हमने देख लिया आपको दर्शन हो गए, तो भगवान को ये सूचना देते हैं कि हम आए थे बस, तो इसीलिए चले जाते। और भी कई कारणों से लोग हॉर्न बजाते हैं, तो भगवान ने जब अपना शंख बजाया तो ये कारण नहीं था। भगवान जानते थे कि द्वारका वासी बड़े दुखी हैं भगवान के विरह में, बहुत समय से देखा नहीं है भगवान को, इसलिए आतुर हैं। तो उनके आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ने शंख बजाया कि जैसे ही उन्होंने शंख सुना सब जान गए कि हाँ कृष्ण आ गए हैं, सब भागे कृष्ण की ओर। तो उस उत्साह को, उस आनंद को, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान ने शंख बजाया, पांचजन्य शंख। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, उनकी गदा का नाम है कौमुदी, उनके धनुष का नाम है सारंग। तो भगवान के भी जो सारे अस्त्र शस्त्र हैं वो चिन्मय जगत है, इसीलिए वे सब ही व्यक्ति हैं, उनका भी मूर्तिमान स्वरूप है। तो पांचजन्य ये शंख भगवान ने बजाया। जब भगवान शंख बजाते हैं तो कई लोगों के हृदय में अलग अलग प्रभाव होता है, इसका वर्णन भगवत गीता के प्रथम अध्याय में किया गया। प्रथम अध्याय में वर्णन है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने जब अपने अपने शंख बजाए तो क्या प्रभाव हुआ? उसका एक प्रभाव हुआ कि जो पांडवों की सेना थी, जो पांडव थे, जो सुर थे, उनके हृदय में आनंद बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, जोश आ गया युद्ध करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा भगवत गीता वर्णन करती। भय उत्पन्न हो गया केवल शंख की ध्वनि सुनकर। तो देखिए, वही शंख था, वही कृष्ण थे और वही ध्वनि थी, लेकिन प्रभाव अलग अलग हुआ। एक के हृदय विदीर्ण हो गए, कौरव सोचने लगे कि हाँ ये तो शंख की ध्वनि, ये हमारी पराजय का सूचक है, लेकिन दूसरी ओर पांडवों की सेना सोच रही थी ये हमारे विजय का सूचक है। तो भगवान का शंख, भगवान की जो शंख की ध्वनि है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रभाव क्यों करती है? ध्वनि तो एक ही है, प्रभाव अलग क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने अपने हृदय को तैयार किया है उस ध्वनि को स्वीकार करने के लिए, उसी प्रकार से वो ध्वनि प्रभाव करती है। उदाहरण दिया जाता है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा हर भूमि पे समान होती है, कि कोई भूमि बंजर होती है और कोई भूमि उपजाऊ, उपजाऊ भूमि में फसल आ जाती है उस जल के द्वारा, लेकिन बंजर भूमि कुछ नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं। इसी तरह जब भगवान के नाम की ध्वनि हमारे हृदय में प्रवेश करती है, अगर हमने अपने हृदय को बंजर बना रखा है, उसका सिंचन नहीं किया है, उसका संरक्षण नहीं किया है, उसमें बीज नहीं बोया है, तो कोई फसल नहीं आती। लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से सिंचन किया है, उसमें बीज बोया है, उसका संरक्षण किया है, तो फिर उसमें से बहुत सुंदर लता निकलती है, भक्ति लता, और वो जाती है भगवान के धाम गोलोक वृंदावन तक। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जीव ब्रह्मांड में भटकता रहता है, और ब्रह्मांड में भटकते हुए ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु कृष्ण कृपा, जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाती है, और फिर भक्ति लता का बीज उसके हृदय में रोपण हो जाता है। लेकिन उस भक्ति लता के बीज को ये बीज मिल जाता है हमें, अर्थात कई कई जन्मों में सारे कार्य कर लेने के बाद फिर हमारे हृदय में भक्ति लता बीज रोपण होता है, अर्थात कई जन्मों में बंजर भूमि अब उपजाऊ बन जाती है गुरु कृष्ण कृपा, गुरु और कृष्ण की कृपा से। और जब ये भूमि उपजाऊ हो जाती है, इसमें बीज लग जाता है भक्ति लता का, उसको सिंचन करना चाहिए, जल देना चाहिए। जैसे हम लोग यहां बगीचा लगा रहे हैं, अगर कुछ दिन जल नहीं दे तो सूख जाता है, बीज है, पौधा है, लेकिन जल नहीं है सूख जाता, तो सिंचन करना चाहिए श्रवण और कीर्तन के द्वारा। श्रवण और कीर्तन ये जल देने के समान है भूमि में, सिंचन करना, भूमि को सींचना जल से। तो जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो इसको रक्षा करनी है। अगर हम ऐसे ही कहीं बाहर कोई खेत लगा दें तो कोई भी प्राणी आकर उसको खा जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा, तो इसीलिए रक्षा करनी होती है। तो उसकी रक्षा करने के लिए एक मेढ़ बनाई जाती, कुंपन बनाया जाता, और वो है भक्तों का संग। तो जब हम गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं, श्रवण और कीर्तन के द्वारा भक्ति के मार्ग में आगे जाने का प्रयास करते हैं, तो भक्तों का संग है जो हमारी रक्षा करता है अनर्थों से, अपराधों से। तो इस तरह से उसको रक्षा होती है, तब धीरे धीरे वो बीज बढ़ता जाता है, लता में बन जाता है। और ये जो लता होती है, लता समझते हैं आप लोग, जो ऐसे ऊपर जाती है, तो ये लता ऊपर बढ़ती जाती है, इस ब्रह्मांड को भेद देती है, ब्रह्मांड के परे परव्योम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाती है, वहां पर भी उसको संतुष्टि नहीं होती, वैकुंठ को पार कर जाती है, वैकुंठ में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है गोलोक, वहां पर जाती है और श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेती है। ये लता जीवन की पूर्णता है हमारी इस भक्ति लता को श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाना। तो इसीलिए ये जो ध्वनि है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि भक्तों को बड़ा अभय प्रदान करती है, इसीलिए श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में से एक चिन्ह है शंख। और ये शंख का चिन्ह सूचित करता है कि श्री कृष्ण रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं शंख की ध्वनि के द्वारा। जैसे उन्होंने शंख बजाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन इत्यादि की रक्षा की, सांत्वना दी उन्हें कि चिंता नहीं करो, विजय तुम्हारी ही होगी। ऐसे शंख बजाए। वैसे कृष्ण ने शंख कई स्थानों पर बजाया है, एक बार यमराज के लोक में जाकर भी बजाया था। यमराज घबरा गए, भागते हुए आए कि क्या हो गया, कृष्ण कैसे आ गए। तो ऐसे कृष्ण ने शंख को बजाया। तो यहां पर कृष्ण शंख की ध्वनि के द्वारा द्वारिका वासियों के हृदय में प्रेम को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए शंख बजाया। और जब शंख बजाकर फिर सारे द्वारका वासियों ने सुना, तो इस अध्याय में पहले से लेकर करीब 10वें श्लोक तक द्वारका वासी कैसे भगवान का स्वागत करते हैं, कैसे उनको उनका आमंत्रण करते हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, ये वर्णन पहले से 10वें श्लोक तक किया गया। अलग अलग तरह के लोग आए, सब अपने अपनी तरह से आकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। द्वारकावासी आपस में बात करने लगे और बात करते करते वो कहते हैं कि ये जो पुरुष हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं, तो भगवान को संबोधित करके कहते हैं कि आपकी पूजा तो सारे देवता करते हैं, आप सारे देवताओं के द्वारा पूज्य हैं, फिर उनमें ब्रह्मा जी हूं, सनत कुमार हूं, चारु कुमार हो, कोई भी हो, इंद्र क्यों ना हो, ये सब आपकी पूजा करते हैं। तो द्वारकावासी ये वर्णन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप ही उन सब के परम आश्रय हैं। इसके द्वारा द्वारकावासी क्या सिखलाना चाह रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि जितने भी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, सनकादि ऋषि हो, चाहे इंद्र हो इत्यादि, सब आपकी पूजा करते हैं और आप ही उनके परम आश्रय हैं, सबके लिए परम आश्रय हैं। तो द्वारकावासी हमें सिखला रहे हैं कि जहां कृष्ण हैं, वहां हमें कोई और किसी और व्यक्ति की देवता की आवश्यकता नहीं। तो विशेष करके भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश, हमें कोई और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनकी पूजा स्वयं देवता करते हैं और अगर हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनका आश्रय ले सकते हैं, तो फिर किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं। परम आश्रय श्री कृष्ण है। अहम आदिर हि देवानां, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि देवताओं का आदि भी मैं ही हूं, उनका सृष्टा मैं हूं, भगवान ने रचना की है देवताओं की। तीसरे अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं कि मैंने देवताओं की रचना की, अहम आदिर, मैं देवताओं का आदि। इसलिए भगवान का आश्रय ये परम आश्रय, तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। और फिर भगवान की प्रार्थना या भगवान का गुणगान, भगवान की सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारकावासी इसका वर्णन करते हैं, वैसे भगवान को सेवा की क्या आवश्यकता है, वे लोग उपहार लेकर आए भगवान के लिए, जो भी जैसे अपनी तरफ से उपहार ला सके वह उपहार लेकर आए। भगवान को क्या उपहारों की आवश्यकता, भगवान को उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं। तुलना की गई है कि मानो सूर्य को दीपक दिखाना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे सूर्य पूजा की जाती है, तो सूर्य पूजा में सूर्य को दीपक दिखाया जाता है। अब सूर्य के सामने दीपक का क्या महत्व है, वो जो दीपक की रोशनी है वो भी सूर्य से आती है, प्रकाश सूर्य से आता है, लेकिन वही दीपक हम लोग सूर्य को दिखाकर उसकी पूजा करते हैं। तो इसी तरह सब कुछ श्री कृष्ण का, हमारे पास जो है वो भी कृष्ण से आ रहा है, लेकिन उनको हम सेवा के रूप में प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जाता है। तो सूर्य को दीपक दिखाने के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ, जो हमें सूर्य से प्राप्त हुआ है वही सूर्य को अर्पण करना, जैसे गंगा जल में खड़े होकर गंगा का जल लेकर गंगा को अर्पण किया जाता है। गंगा जल गंगा का ही जल है, गंगा को ही अर्पण करना है। तो सूर्य को दीपक दिखाने का अर्थ पहला ये है कि जो भी हमारे पास है वो कृष्ण से प्राप्त हुआ है, उसे कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। और दूसरा अर्थ ये है कि जो हमारी संपत्ति हम सोच रहे हैं वो कृष्ण की तुलना में बहुत निम्न है, बहुत तुच्छ है। सूर्य का प्रकाश कितना और एक दिए का प्रकाश कितना होगा। तो इसीलिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए अपने ऐश्वर्य का, अपने संपत्ति का, क्योंकि कृष्ण की संपत्ति की तुलना में बहुत छोटा। तो इस तरह द्वारकावासी कुछ उपहार लाए, प्रार्थनाएं करने लगे और फिर उन्हीं प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना वो करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है कि आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, भवायमस्तु भवेश्व भावं त्वमेव माता सुहृदं पति पिता गुरु, सभी आप हैं। इसका अर्थ क्या है? इसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसका पहला अर्थ हो सकता है कि भगवान इन सब के आदि हैं, वो आदि गुरु हैं, वो आदि पति हैं, वो आदि पिता हैं, वो आदि माता हैं, क्योंकि जीव उनसे ही आते हैं। शरीर हमें प्राप्त होते हैं माता पिता से और जीव की उत्पत्ति होती है श्री कृष्ण से, इसलिए वो आदि हैं। तो इसीलिए वो आदि माता पिता हैं, आदि गुरु हैं, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, मूल ज्ञान कृष्ण से आता है। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है ज्ञान देना। गुरु का ये प्रथम कार्य है कि वो भक्ति का ज्ञान दे, वो अपने आश्रितों को, अपने शिष्यों को भक्ति में आगे बढ़ाए। और कृष्ण का क्या कार्य है? शास्त्र के द्वारा यही कार्य कृष्ण करते हैं। और शास्त्र आए कहां से हैं? कृष्ण से। तो मूल है कृष्ण। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की ध्वनि से वेद प्रकट होते हैं। जब वराह के रूप में श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी को उठाकर आते हैं, पूरे गीले हो जाते हैं गर्भोदक सागर में जाकर, तो जोर से अपने बालों को ऐसे झाड़ते हैं पानी को, जैसे आपने देखा होगा शूकर कभी कभी ऐसे घुमाता है गीले होने, तो भगवान घुमाते हैं तो उससे वेद प्रकट हो जाते हैं। जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं और दहाड़ते हैं तो वेद प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं तेने हृदय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो वेद प्रकट हो जाते हैं। तो वेद भगवान की वाणी है, भगवान से प्रकट होते हैं। तो इसीलिए वही मूल है सारे ज्ञान का। इसीलिए गुरु हमारे आदि गुरु श्री कृष्ण हैं, हमारे आदि पिता श्री कृष्ण हैं, आदि पति, आदि स्वामी, आदि माता सबसे पहले श्री कृष्ण हैं। लेकिन जीव की मूर्खता देखिए, हम अपने आदि पिता को छोड़कर, आदि माता आदि गुरु को छोड़कर, हम इस जगत में जो बहुत थोड़े समय के लिए हमारे माता पिता हैं, हमारे संबंधी हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं। एक जीवन के लिए जो हमारे माता पिता, क्या है एक जीवन? अगर शाश्वत काल से तुलना की जाए तो हमारा ये एक जीवन कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा समय है, और उसके लिए हम आसक्त होते हैं। शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है कि इस तरह है हमारे जो परिवार, हमारे जो संबंधी, वो किस तरह है? वो इस तरह है कि मानो नदी में बहने वाले तिनके। कभी कभी नदी के बहाव से कुछ तिनके एक साथ आ जाते हैं, थोड़े समय साथ रहते हैं। आपने देखा होगा, ये कभी देखिए, नदी में ध्यान दीजिए, नदी के बहाव होता है, थोड़े बहुत घास के, सूखे घास के तिनके एक साथ आ जाते हैं और फिर लहर आती है, फिर अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन है काल के प्रभाव से, ये काल की जो नदी है वो बह रही है, बहती रहती है। तो काल के प्रभाव से हम सब कुछ साथ में आ जाते हैं, ये तिनकों के समान है। कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई माता, कोई पिता, ये सब थोड़े समय के लिए साथ में आ जाते हैं और फिर अचानक लहर आती है काल की और सब अलग हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण से शाश्वत संबंध है हमारा, उस संबंध को भूलना नहीं चाहिए। उस संबंध को भूलकर अगर हम इन अशाश्वत क्षणिक संबंधों को महत्व देते हैं, ज्यादा महत्व उनको देते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन की सफलता है श्री कृष्ण की भक्ति, बाकी सब मोह है। अगर कृष्ण से विरह किसी भी चीज को स्वीकार किया वो मोह है, लेकिन कृष्ण से संबंधित हर वस्तु सत्य है, क्योंकि श्री कृष्ण परम सत्य है। तो द्वारकावासी ये प्रार्थनाओं को कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ हैं, और बहुत उपहार उनके लिए लाए, और श्री कृष्ण भी फिर आगे के श्लोकों में उनका अनुमोदन करते हैं। तो 11 से लेकर 15 श्लोक में द्वारिका का वर्णन किया गया। पहले तो द्वारका वासी आए, पहले श्लोक से हम देखते हैं जब भगवान ने शंख बजाया सब बड़े प्रसन्न हुए, पता चला भागते हुए आए, अलग अलग प्रकार के लोग आए, सारे लोगों का वर्णन है, ब्राह्मण आए, वैश्य आए, शूद्र आए, वैश्याएं आई, ये भी भागवत में वर्णन है। तो उस समय में जो भी द्वारका में थे वो सब अपनी सेवा करने आए भगवान के लिए। और फिर द्वारिका कैसी थी, तो द्वारिका का वर्णन किया गया कि पूरी द्वारिका को सजाया हुआ था, लोगों ने हर घर को सजा दिया था कि श्री कृष्ण आए हैं, पूरे सड़कों पर, महलों पर, घरों पर सब जगह बड़े शुभ चिन्ह थे, पत्ते लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, तोरण, तोरण कहते हैं ना यहाँ पर, लोगों ने तोरण लगाए हुए थे, रंगोली से अपने घरों को सजाया हुआ था, जल छिड़क कर उसको साफ किया हुआ था, ये भगवान के आगमन के लिए था। हम जब इस वर्णन को पढ़ रहे थे तो हमें स्मरण हो रहा था कि अभी रथ यात्रा है, और जब रथ निकले भगवान का तो ऐसे कारवार को सजाना चाहिए, हर हर घर में, हर सड़क पर जहां से भगवान जाए उसको सजाना चाहिए, ताकि भगवान के आगमन के लिए हम इस नगरी को तैयार कर सके। तो यहां से हमें ये लेना चाहिए कि कैसे उन्होंने द्वारका नगरी को सजाया था श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण आए और सभी संबंधी उनके उनसे मिलने के लिए आए, और श्री कृष्ण सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। तो देखिए कृष्ण भी नियम का पालन करते हैं, जब वो आते हैं मनुष्य की भूमिका निभाते हैं तो जो साधारण नियम है उनको पालन करते हैं। तो साधारण नियम बल, हालांकि इतने समय बाद आए थे तो सीधे पत्नियों के महल में नहीं गए, पहले माता पिता के महल में गए, उनको आदर दिया और उनके चरण स्पर्श किए, देव की रोहिणी इत्यादि वहां पर थी। तो ऐसा वर्णन है कि उस समय भी, अभी तो कृष्ण कोई छोटे बच्चे नहीं थे, लेकिन जब देवकी ने अपनी गोद में बिठाया तो उनके स्तनों से दूध बहने लगा। ये मात्र प्रेम है कि अपने बच्चे को जैसे एक माता जब गोद में लेती है तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। तो देखिए इस समय भी इतना प्रेम देवकी को माता के रूप में, कि जैसे ही कृष्ण को गोद में बिठा, अब तो कृष्ण बड़े हो चुके हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी माता के स्तनों से दूध बहने, ये मातृभाव है। माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। और उनकी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण को इतने समय बाद देख रहे हैं, और उस वात्सल्य प्रेम में, उस वात्सल्य भाव में, अश्रुओं से उन्होंने अभिषेक कर दिया श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को भिगो दिया उन अश्रुओं से। ये प्रेम के अश्रु हैं। प्रभुपाद एक स्थान पर समझाते हैं कि हमारे जो अश्रु होते हैं वो अलग अलग कारणों से आते हैं, कभी प्रसन्नता में और कभी दुख में। जो प्रसन्नता के अश्रु होते हैं वो प्रेम को, वो आनंद को बढ़ा देते हैं। जब बहुत ज्यादा आनंद हृदय में होता है तो व्यक्ति अश्रुओं को रोक नहीं पाता। तो ऐसे ही देवकी रोक नहीं पाई अश्रुओं को, और उन्होंने अभिषेक कर दिया श्री कृष्ण का। और फिर श्री कृष्ण वहां से उन सबको संतुष्ट करके फिर उन्होंने अपनी रानियों के महल में प्रवेश किया। अब आप सोचिए, श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, हर एक के लिए एक एक महल था, 16,108 महल। अब अगर श्री कृष्ण एक एक करके भी एक महल में जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे उनको सारे महलों में पहुंचने के लिए। और इतना तो इंतजार रानियां नहीं कर सकती थी, उनको तो पता चल गया कृष्ण आए हैं, वो तैयार हो गई कृष्ण के स्वागत के लिए। सारी रानियां एक साथ 16,108 महल में, अब श्री कृष्ण अगर एक एक महल में जाते तो पता नहीं शायद महीने लग जाते 16,000 महलों में पहुंचते पहुंचते। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया 16,108 रूपों में, एक साथ 16,108 महलों में प्रवेश किया उन्होंने एक ही समय में। श्री कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को संतुष्ट करने के लिए, तो जब रानियों ने श्री कृष्ण को देखा तो बड़ी प्रसन्न, उनको समझ, कई रानियों को बड़ा क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको कैसे स्वागत करना चाहिए, थोड़ी लज्जा भी आ रही थी कि सबके सामने जाकर तो आलिंगन नहीं कर सकते श्री कृष्ण को, प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन हृदय में आनंद भी था श्री कृष्ण इतने समय बाद आए हैं। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन है, उन्होंने मन में ही आलिंगन कर लिया श्री कृष्ण का, क्योंकि लोग लाजवश जा नहीं पाए, या फिर अपने बच्चों के द्वारा, क्योंकि जो बच्चे थे वो जाकर आलिंगन कर रहे थे कृष्ण को, और रानियों ने उन्हीं के द्वारा आलिंगन कर लिया श्री कृष्ण का। और ये रानियां कौन है, बहुत सुंदर है, इनका वर्णन किया गया। दरअसल श्री कृष्ण के महत्व का वर्णन करने के लिए रानियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया। बड़ी सुंदर थी ये रानियां, ऐसा कहा जाता है कामदेव को भी पराजित कर दे, कामदेव के हाथ से अपना धनुष छूट जाए, ऐसी सुंदरता थी इनकी। हम लोग वर्णन सुन चुके हैं जब रुक्मिणी हरण, आशा है आप सब ने रुक्मिणी हरण की कथा सुनी होगी, रुक्मिणी हरण जब होना था, श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने वाले हैं, रुक्मिणी को सूचना मिल गई रात्रि के समय कि श्री कृष्ण आ गए हैं। ब्राह्मण ने आकर कहा चिंता मत करो आ गए हैं श्री कृष्ण। अब रुक्मिणी सुबह पूजा के लिए जा रही है, उनके उनके परिवार का नियम है गिरिजा जी की पूजा करनी है, देवी की पूजा के लिए जा रही है, उन्होंने तो पहले ही लिख दिया था, अगर आपने पत्र पढ़ा हो, वैसे किसी का प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन शुभदेव गोस्वामी ने प्रेम पत्र को पब्लिक कर दिया, घोषणा सारा जैसा रुक्मिणी लिखा वैसा का वैसा लिख दिया भागवत में। तो 7 श्लोक है, उन्होंने बहुत सुंदर पत्र लिखा था, और रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, सब बताया था कि मैं सुबह मंदिर जाऊंगी और वहां से वापस आते समय आप मेरा हरण कर लेना, सारी योजना बनाकर दी थी रुक्मिणी ने कैसे हरण करना है मेरे। तो अब योजना के अनुसार रुक्मिणी जा रही हैं, जाते समय तो रथ पर गई लेकिन आते समय पैदल आई थी, क्योंकि रथ पर आती तो भगवान को हरण करने में तकलीफ होती, इसलिए पैदल आ रही थी वापस। राजा की पुत्री है, उनको पैदल नहीं चलना चाहिए, लेकिन उस दिन चल रही। तो मंदिर से निकलकर जब वो पैदल चली तो अब उन्हें पता नहीं था कृष्ण कहाँ है, वैसे तो रुक्मिणी ने आज तक कृष्ण को देखा नहीं था, केवल सुना था कृष्ण के बारे में, और सुनने से इतना प्रेम हो गया था कि अपने प्राण देने तैयार थे। तो अब वो देखना चाहती थी कृष्ण है कहाँ, कौन कृष्ण है, तो देखने के लिए उनको घूंघट उठाना पड़ा, और जैसे ही उन्होंने घूंघट उठाया, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा अपना चेहरा, थोड़ा सा घूंघट उठाया, वहां जितने उपस्थित राजा थे, शिशुपाल आदि जो शिशुपाल के साथ आए थे, बहुत सारे राजा अपनी अपनी सेना लेकर कि शिशुपाल चिंता नहीं करो, हम देखेंगे कैसे वो ग्वाला आता है, उसको तो हम रोक लेंगे, सब सेना लेकर आए थे, और राजा सब खड़े थे अपने अपने रथ पर, बस जरा सा सौंदर्य देखा रुक्मिणी का, हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए और राजा मूर्छित हो गए, सारे जितने राजा थे अपने रथ से नीचे गिर गए मूर्छित होकर। और कृष्ण ने देखा कि बहुत अच्छा समय है, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने रुक्मिणी को उठाया और चल दिया। तो इसीलिए जब रुक्मिणी का हरण हुआ तो कोई राजा को पता नहीं चला, क्योंकि सब मूर्छित पड़े थे, और फिर जब मूर्छा छूटी देखा, अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो ले गया, भागो भागो, तो फिर सब भागे पीछे, फिर युद्ध किया कृष्ण ने। तो ये सौंदर्य है, रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन किया गया, और ऐसे ही सारी जितनी रानियां थी वो सुंदर थी। लेकिन श्री कृष्ण यहां वर्णन करते हैं इस अध्याय में कि हालांकि इतनी सुंदर हैं उनकी रानियां, लेकिन कृष्ण प्रभावित नहीं होते, ये कृष्ण की दिव्यता का वर्णन किया गया। तो 24 से 27वें श्लोक में कृष्ण का सौंदर्य और फिर 25 से लेकर 28 से लेकर 35वें श्लोक तक अपनी रानियों के साथ कैसे कृष्ण आदान प्रदान करते हैं इसको वर्णन किया गया। तो कृष्ण से जो रानियां हैं वो कभी कभी इतनी सुंदर हैं लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कृष्ण उनसे आसक्त हो, कृष्ण आसक्त नहीं होते। इसलिए रानियां जानना चाहती थी कि गोपियों में ये क्या गुण है जो हम में नहीं है। कभी कभी कृष्ण रुक्मिणी को बुलाना चाहते थे तो राधे कह देते थे, रुक्मिणी कहते मैं रुक्मिणी हूं राधा नहीं हूं। अच्छा कभी ललिता विशाखा, तो रानियां सोचती थी कि ये यहां रहते हुए हमारे सामने हमारे साथ रहते हुए याद राधा को करते हैं, याद ललिता विशाखा को करते हैं, तो क्या गुण है उनमें ये रानियां जानना चाहती थी। इससे हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि हालांकि इतनी सुंदर थी लेकिन कृष्ण किसी सुंदरता से प्रभावित नहीं होते, कृष्ण भक्ति से प्रभावित होते, गोपियों के समर्पण से प्रभावित होते। तो इसलिए यहां वर्णन किया गया कि कृष्ण का स्तर दिव्य है, कृष्ण ये इस किसी भी चीज से प्रभावित नहीं, अनासक्त है, पूर्ण अनासक्त, नित्य शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, अभिन्नत्व नाम नामिन। जैसे श्री कृष्ण पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है, ऐसे ही उनका नाम भी पूर्ण शुद्ध है, अभिन्नत्व अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण से। इसलिए जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण श्री कृष्ण का संग कर सकते हैं। जैसे द्वारका वासी श्री कृष्ण को देख रहे हैं हम भी श्री कृष्ण को देख सकते हैं। सबसे पहले अपने को शुद्ध करना है भगवान के नामोच्चारण के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण को देखने की प्रक्रिया क्या है, यहां द्वारकावासी देख रहे हैं, पहली प्रक्रिया भगवान के नाम का जप करना। जितना हम जप में रुचि बढ़ाएंगे, जितना जप बढ़ाएंगे उतना हम भगवान के निकट आएंगे। दूसरा मार्ग श्री कृष्ण को देखने का अर्च विग्रह की सेवा। भगवान की जब हम सेवा करते हैं विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में उनकी अर्चना आराधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भगवान को देखने के योग्य हो जाते हैं। चैतन्य भागवत में लिखा है कि भगवान ने ये दो मार्ग दिए हैं हम सबके लिए, अर्च विग्रह की सेवा करना और भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो इस तरह जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और अर्च विग्रह की सेवा करते हैं हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम श्री कृष्ण को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और श्री कृष्ण को देखने का तीसरा मार्ग है किसी भी अन्य मार्ग से उनकी सेवा करना, सेवा से संबंध को स्थापित करना। हमारा संबंध श्री कृष्ण से सेवा से स्थापित होता है, जितनी हम सेवा कृष्ण की करते हैं उतना हमारा संबंध निकट का होता जाता है। तो भगवान के नामों का उच्चारण करना, अर्च विग्रह की सेवा करना और अन्य सारी सेवाओं को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, ये मार्ग है जिससे हम अपना संबंध कृष्ण से स्थापित कर सकते हैं और फिर कृष्ण को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और उस तरह से जो जब हम कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं तो जैसे श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ, अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे ही हर जीव से आदान प्रदान करते हैं और हर जीव को संतुष्ट करते हैं ताकि वो अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सके। तो ऐसे श्री कृष्ण ने द्वारिका में प्रवेश किया। अब अगले अध्याय में फिर से शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रमुख विषय पर ले आएंगे। प्रश्न किया था परीक्षित महाराज के विषय में और सूत गोस्वामी भावाविभोर हो गए, श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। और अब फिर से शौनक आदि ऋषि कहेंगे, महाराज हमारे प्रश्न पर आ जाइए, उत्तर दीजिए। तो फिर अगले अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म की कथा को कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।